लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि ख्रीस्त के सुसमाचार के प्रति निष्ठावान और सदैव धर्माधीक्षित धर्म सभा की संयुक्ति में जीवन यापन कर कलीसिया एकात्मता, भ्रातृत्व और आतिथ्य का समुदाय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी पर चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी प्रकाशित की। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करते जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवेंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परम धर्माध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में अपने उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, हमने अपने पिछले प्रसारण में वर्तमान समय की चुनौतियों के बारे में कहा कि हमें यह पहचानने की जरूरत है कि यदि हमारे पास कुछ बपतिस्मा प्राप्त लोग अपने में कलीसिया से संयुक्त होने का एहसास नहीं करते, तो इसका कारण कुछ कलीसियाई निश्चित संरचनाएं और पल्ली समुदायों के द्वारा कई अवसरों पर लोगों का स्वागत नहीं किया जाना या समस्याओं के समाधान में नौकरशाही तरीके को अपनाना है, चाहे वह लोगों के जीवन की साधारण या जटिल समस्याएं क्यों ना हो। बहुत से स्थानों में हम प्रेरितिक पहुंच के बदले एक तरह से आधिकारिक व्यवहार को पाते हैं, मानो यह सुसमाचार प्रचार का हिस्सा ना होकर संस्कारों का एकाग्रचित अनुष्ठान हो। श्रोताओं, सांप्रदायिकता की प्रक्रिया हमारे विश्वास को नगण्य करती नजर आती है और कलीसिया का दायरा अपने में छोटा और व्यक्तिगत प्रतीत होता है। इससे भी बढ़कर अपने से परे जाने के विचार का पूर्णतः परित्याग करना, नैतिकता में ह्रास, व्यक्तिगत और सामूहिक पापों के विचार का अभाव, जिसके फलस्वरूप सापेक्षवाद में निरंतर वृद्धि हुई है, इन सारी चीजों ने हमारे सामान्य विचारों को विकृत किया है, विशेष रूप से किशोरों और युवा व्यस्कता की अवस्था को, जो परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के धर्माध्यक्षों ने इसके विषय में सही कहा है, जबकि कलीसिया वस्तुनिष्ठ नैतिक मापदंडों के अस्तित्व पर जोर देती है जो सभी के लिए सामान्य है। हमारी संस्कृति में कुछ ऐसे हैं जो इस शिक्षा को असंगत घोषित करते हैं, अर्थात ये हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं। इस तरह के दावे आमतौर पर नैतिक सापेक्षवाद का अनुसरण करता है, जो व्यक्ति के पूर्ण अधिकारों में विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में कलीसिया को एक विशेष पूर्वग्रह को बढ़ावा देने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के रूप में देखा जाता है। हम एक सूचना संचालित समाज में जीवन यापन करते हैं, जो आंकड़ों के साथ हमें भर देता है, जो हमें छिछली नैतिकता की ओर अग्रसर करता है। इसके प्रत्युत्तर में हमें चाहिए कि हम लोगों को शिक्षा दें जो तर्कपूर्ण ढंग से सोचना और नैतिक मूल्यों को अपने में धारण करते हुए उनमें बढ़ने हेतु हमें प्रोत्साहित करे। श्रोताओं, समाजों में संप्रदाय की आंधी के बावजूद जिसके कारण बहुत से समाज अपने को प्रभावित पाते हैं, बहुत से देशों में यहाँ तक कि जहाँ ख्रिस्तीय अपने में अल्प संख्यक हैं, कैथोलिक कलीसिया के प्रति लोगों की धारणाएं अपने में विश्वसनीय हैं। वे उनके कार्यों जिन्हें वे अति जरूरतमंदों के लिए करते हैं विश्वास और एकात्मकता के भाव प्रकट करते हैं। कलीसिया ने बारंबार शांति, सामाजिक एकता, भूमि, जीवन की सुरक्षा, मानव और मौलिक अधिकारों इत्यादि संबंधों में उत्पन्न हुई कठिनाइयों के समाधान में एक मध्यस्थ स्वरूप अपने कार्यों का निर्वहन किया है। कैथोलिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के द्वारा विश्व में कितने सारे अच्छे कार्य किए गए हैं, यह अपने में एक बहुत अच्छी बात है। फिर भी हमें लोगों को यह समझाना मुश्किल लगता है कि जब हम अन्य प्रश्नों को उठाते जो जनता के हित में कम हितकारी हैं, तो हमारा यह कार्य मानवीय गरिमा और जन सामान्य की भलाई से प्रेरित है जिसे हम अपनी निष्ठा में रहकर निभाते हैं। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि समुदायों और सामाजिक बंधनों के रूप में परिवार आज अपने में एक अति गंभीर सांस्कृतिक कठिनाई का सामना कर रहा है। परिवार के संबंध में जहां हम अपनी विभिन्नताओं के बावजूद एक साथ मिलकर रहने की बातों को सीखते हैं, पारिवारिक संबंधों का कमजोर होना अपने में अति गंभीर है, क्योंकि यह समाज की आधारभूत शिला है जहां माता पिता अपने बच्चों को विश्वास की निधि प्रदान करते हैं। विवाह आज की परिस्थिति में ऐसी जान पड़ती है मानो यह अपनी भावनाओं की संतुष्टि का एकमात्र स्वरूप हो जिसे किसी भी रूप में पूरा किया जा सकता या अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी तरह से बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन का अपरिहार्य योगदान दंपतियों की भावनाओं और क्षणिक जरूरतों से परे है। इस संदर्भ में फ्रांस के धर्माध्यक्षकों ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि इसकी उत्पत्ति प्रेमपूर्ण भावना की परिभाषा के अनुसार अल्पकालिक नहीं है, बल्कि अपने उत्तरदायित्वों को गहराई से जानते हुए दंपतियों का एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पित जीवन में प्रवेश करना है। श्रोताओं, आधुनिक समय में व्यक्तिगतवाद और वैश्वीकरण एक उस जीवन शैली का समर्थन करता है जो व्यक्तिगत संबंधों के विकास और स्थिरता को कमजोर करता और पारिवारिक बंधनों को भी विकृत करता है। हमारे प्रेरित कार्यों को चाहिए कि वे इन तथ्यों को और अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाएं कि पिता के साथ हमारा संबंध एक ऐसे संवाद की मांग करता है जो हमें प्रोत्साहित करता है, हमें चंगाई प्रदान करता और हमारे आपसी संबंध को और अधिक मजबूत बनाता है। हमारी दुनिया में जहां हम कुछ देशों में युद्धों और संघर्षों को विभिन्न रूपों में पुनः उभरता हुआ पाते हैं, यद्यपि हम ख्रिस्तीय एक दूसरे का सम्मान करने के अपने उद्देश्य में दृढ़ बने रहते हैं, घावों की चंगाई लाते, सेतुओं का निर्माण करते, संबंधों को मजबूत करते हुए एक दूसरे को सहन करते और उनके जीवन की तकलीफों को अपने में साझा करते हैं। आज भी अधिकारों की रक्षा और बड़े लक्ष्यों की खोज के लिए विभिन्न संघों की स्थापना की जा रही है। यह कई लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में योगदान देने की इच्छा का एक सुंदर संकेत प्रदान करता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरित प्रबोधन एवंजेली गौडियम पर एक चर्चा सुनी। हम इस पर अपनी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे।
यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, आनंद के साथ के सम्मुख उठाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख उठाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है दया उसकी सदा है, वो कितना भला है स्तुति उसकी सदा है, वो कितना अच्छा है दया उसकी सदा है, वो कितना भला है स्तुति उसकी सदा है। यहोवा की स्तुति करो, वासियो यहोवा की स्तुति करो।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कैथोलिक कलीसिया आज महान प्रकृति प्रेमी संत फ्रांसिस असीसी का पर्व मनाती है। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों को संत फ्रांसिस असीसी की याद दिलाते हुए उनके उदाहरणों पर चलने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक ट्वीट प्रसिद्ध कर लिखा, संत फ्रांसिस असीसी जिन्होंने सूर्य, समुद्र और वायु को अपना भाई के रूप में देखा, सभी ओर शांति का बीज बोया और गरीबों, उपेक्षितों, बीमार, बहिष्कृत एवं निम्न लोगों के साथ चले। आइए हम उनका अनुकरण करें। विश्व में पारिस्थितिक संकट को रोकने के लिए मानवता की शक्ति पर एक नए दस्तावेज को मंगलवार को वैटिकन के प्रेस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। कार्डिनल माइकल चर्नी ने कहा कि फिल्म द लेटर हर जगह लोगों का एक स्पष्ट रुदन है, हमें एक साथ कार्य करना है, हमें इसे अभी करना है। वैटिकन प्रेस कार्यालय में फिल्म द लेटर की प्रस्तुति के अवसर पर कार्डिनल चर्नी ने बतलाया कि फिल्म निर्माता निकोलस ब्राउन का नया दस्तावेज संवाद की प्रमुख अवधारणा पर प्रकाश डालता है। फिल्म का उद्देश्य स्वयं पोप फ्रांसिस के विश्व पत्र लाउदातो सी के संदेश को व्यक्त करना है। उन्होंने कहा, 7 साल पहले इसके प्रकाशन के बाद से विश्व स्तर पर वैश्विक मंच पर व्यापक प्रभाव होने के बावजूद हमारे आम घर का पर्यावरण संकट काफी खराब हो गया है। रोम स्थित संत इजीतो समुदाय ने उन प्रवासी अमरनाथों की यादगारी में 3 अक्टूबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिन्होंने यूरोप की यात्रा पर जान गंवा दी। 3 अक्टूबर को इटली में यूरोप की यात्रा पर जान गंवाने वाले अप्रवासी अमरनाथों की यादगारी एवं उनके स्वागत हेतु राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हर साल हजारों अप्रवासी बेहतर जीवन की तलाश में यूरोप की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें खतरनाक रास्ते से गुजरते हुए मौत का सामना करना पड़ता है। इस दिन को ठीक 9 साल पहले लंपेदूसा के तट पर एक जहाज टूटने से मारे गए 368 लोगों की याद में चुना गया है। उसके बाद से करीब 22,000 अप्रवासियों ने भूमध्य सागर में अपनी जान गंवाई है जो नाव के सहारे यूरोप में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। संत इजीदो समुदाय के अप्रवासी परियोजना की प्रभारी सिसिलिया पानी के अनुसार यह संख्या उनकी है जिन्हें हम जानते हैं। वास्तव में मरने वालों की कुल संख्या इससे काफी अधिक हो सकती है। संत इजीदो समुदाय ने इटली में अप्रवासी संकट का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने मानवीय गलियारे तैयार किए हैं ताकि शरणार्थियों को यूरोप लाया जा सके। पानी ने बतलाया कि संत इजीदियो ने मानवीय गलियारे कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की। ताकि समस्या को जवाब दिया जा सके एवं मानव तस्करी का सामना किया जा सके। अब तक उन्होंने 5,000 आश्रय देने वालों को यूरोप में सुरक्षित लाया है। संत पापा फ्रांसिस ने इन गलियारों के महत्व पर कई बार बोला है तथा कई शरणार्थी दलों को रोम आने का निमंत्रण दिया है, जहां उन्हें वैटिकन अथवा कैथोलिक संस्थाओं के घरों में आश्रय प्रदान किया गया है। पोप के रूप में अपनी पहली प्रेरित यात्रा उन्होंने 2013 में लंपेदूसा द्वीप में की थी, जहां उन्होंने वहां एकत्रित अप्रवासियों के लिए ख्रिस्त्याग अर्पित किया था और उनकी स्थिति के लिए वैश्विक उदासीनता की निंदा की थी। इटली में हाल के चुनावों से अप्रवासन एवं अप्रवास नीति के आसपास की राजनीतिक कहानी को बदलने की उम्मीद है। पानी को उम्मीद है कि अप्रवासी एवं शरणार्थियों के लिए कहानी नहीं बदलेगी, क्योंकि यह निश्चय ही अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इन लोगों के लिए सकारात्मक कहानी हो, जो यूरोप के लिए समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन है, उससे नहीं बदला जाएगा। संत पापा फ्रांसिस ने अप्रवासियों एवं शरणार्थियों तथा आश्रय की तलाश करने वालों के लिए स्वागत, सुरक्षा, प्रोत्साहन एवं एकीकरण के लिए बार बार आह्वान किया है। संत पापा के शब्दों की याद करते हुए संत इजिदियो समुदाय की प्रतिनिधि ने बतलाया कि उनके लिए खासकर विदेशी नागरिकों का एकीकरण, उन्हें नियमित रोजगार, सुरक्षा एवं इताली भाषा सीखने का अवसर देना है। उन्होंने इटली में पैदा हुए बच्चों के अप्रवासी माता पिता के लिए नागरिकता को मान्यता देने वाले कानून पर जोर देने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, बच्चे जो इटली में पैदा हुए हैं और इटली में स्कूल पढ़ रहे हैं एवं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इटली में बिताया है, जो अपने मूल देश के रिश्तेदारों को नहीं जानते, उन्हें 18 साल से पहले ही नागरिकता मिलनी चाहिए। संत इजिदियो समुदाय इसी पर काम कर रहा है। यूरोप में परमधम पीठ के सुरक्षा एवं सहयोग संगठन के स्थायी पर्यवेक्षक मोनसिन्योर जानोस ने वैध, न्यायिक एवं व्यवहारिक उपायों को सुनियोजित किए जाने का आह्वान किया है, ताकि महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ हिंसा का सामना किया जा सके। उन्होंने जोर दिया कि हम सभी स्वतंत्र जन्मे हैं और प्रतिष्ठा एवं अधिकार सभी के लिए समान हैं। उन्होंने कहा, आइए हम ना भूलें कि महिलाएं और पुरुष अपनी अंतर्निहित गरिमा एवं मूल्य में एक समान हैं। परमधम पीठ के सुरक्षा एवं सहयोग संगठन के स्थायी पर्यवेक्षक ने पोलैंड में हो रहे वर्सा मानव आयाम सम्मेलन के 5वें पूर्ण सत्र में अपने हस्ताक्षर में सोमवार को इस बात की पुष्टि दी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोनसिन्योर ने गौर किया कि कई लोगों की प्रतिबद्धता के बावजूद और शामिल राष्ट्रों द्वारा कई उपायों को अपनाए जाने के बाद भी महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ हिंसा, चाहे यह शारीरिक हो, यौन अथवा मनोवैज्ञानिक हो, हमारे समाज में अब भी एक मुसीबत बनी हुई है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा, युद्ध की स्थितियों से महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ उच्च स्तर की हिंसा हो रही है, जैसा कि यूक्रेन में हो रहा है, और हिंसा की घटनाएं सामान्य जीवन में भी हो सकती हैं। उनमें से कुछ हैं कार्यस्थल में दुराचार, यौन शोषण, अश्लील साहित्य, वेश्यावृत्ति, जबरन नसबंदी, गर्भपात के लिए प्रोत्साहन और चयनात्मक गर्भपात आदि। मोनसिन्योर ने कहा, हर एक व्यक्ति और पूरे समाज को क्षति पहुंचती है जब एक महिला या लड़की की जन्मजात प्रतिष्ठा को सम्मान नहीं दिया जाता या उसकी रक्षा नहीं की जाती है। इसका सामना करने के लिए उन्होंने वैधानिक, न्यायिक और व्यवहारिक उपायों को अपनाए जाने का आह्वान किया, ताकि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोका जा सके और इस तरह के अन्याय को दूर किया जा सके। उन्होंने संत पापा फ्रांसिस के 1 जनवरी 2020 के उपदेश की याद की, जब संत पापा फ्रांसिस ने महिलाओं की सुरक्षा पर बल दिया था। संत पापा ने कहा था, हम अपनी मानवता के स्तर को इससे समझ सकते हैं कि हम एक महिला के शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।